ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों का रीजन चल रहे सेवन पॉइंट्स सेवन मिनट्स 25:10:78 की मुरली है। मुरली है चारों बातों से न्यारापन। आप लोग देख रहे सामने बाबा का, बाबा ने मुरली में शुरुआत ही यही किया कि कमल आसन धारी, जो कमल आसन पे बैठता है ब्राह्मणों को कमल आसन वास्तव में दिखाते हैं देवताओं को कमल पर, मगर बाबा ने हमारे स्थिति को क्या किया कमल आसन। ऐसा भी देखा गया तो लौकिक में जो भी मेहमान आते हैं पहले क्या करते हैं, उनको आसन डाल के बिठाते हैं। इसी तरह बाबा ने हम बाबा के बच्चे बनने के बाद हम लोगों को क्या किया, क्या आसन दिया है, वो कमल आसन दिया है। कमल आसन पे बैठकर माना कमल को क्यों दिया है बाबा ने, क्योंकि कमल जो रहती है कहाँ रहती है, कीचड़ में रहते हुए भी, अर्थात इस विकारी दुनिया में या कलयुगी दुनिया में रहते हुए हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे बने, अर्थात उससे न्यारा। जैसा कमल के फूल के ऊपर बूंद पड़े तो क्या होता है, टिकता नहीं है, इसी तरह हमारे बुद्धि के ऊपर या हमारे परिस्थिति या कितने भी प्रकार की आवे वो हमारे सामने टिक नहीं सकते। कब, जब कमल आसनधारी होते। पहला बाबा ने पहला बोला देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, पुराने संस्कार, इन चारों बातों से न्यारा होना है। देह के हम संबंध को किस तरह देखे, लौकिक संबंध नहीं, जैसा बाबा ने आते ही आप लोगों को क्या बोला, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। माना हमारा इतना, जैसा हम लौकिक में हाथ को हम डायरेक्शन दे रहे नहीं, वो अपने आप हिल रहा, कितना नेचुरल इस देह का भान हो गए, इस तरह हम आत्मा है इतना भान हो जाए मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना हम प्रैक्टिस, ज्ञान सुनने का नहीं, उसके अंदर डेथ में जाकर एकांत में बैठकर, हमेशा सचिन भाई कहता है यहां नहीं, तपस्या यहां करना इजी है, मगर नेचुरल नेचर के साथ जाओ, वहां जो अनुभव कर सकते हो वो मजा जो है वो हम ले सकते हो। कब, जब आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है तो। इसी तरह हम उसमें क्या ऐड करना है, हमेशा सूरज भाई कहता है क्लास में, कौन सा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसी स्वमान देना होगा, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता सो देवता हूं। जब ये भान हमारे अंदर आता है तो हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी चलन चलेंगे, जो भी बोल बोलेंगे, उसमें देह भान नहीं आ सकता है, क्योंकि हम देह भान लंबे समय से 63 जन्म से अनुभव करते हैं। अभी इस एक जन्म में उसको परिवर्तन करना है। उसको परिवर्तन करने के लिए एक तो प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कम से कम एक कागज लेके मैं आत्मा हूं ये लिखने का शुरुआत करो, उसके बाद नेचुरली प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरा है देह के संबंध। संबंध में क्या है, वास्तव में बाबा ने तो अलग बताया, मगर संबंधों में देखा गया तो चाचा मामा काका ये सब संबंधों का लौकिक में होता है, मगर यहां बाबा ने बताया हमारा आत्मिक नाते से हम क्या है, आत्मा भाई भाई। जैसा ब्राह्मण वंशी के नाते से बहन भाई, हमारे अंदर ये भान कब आएगा, जब शुरू में जो हमारा आत्मिक स्थिति होगा और ये संबंध जो आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस भी तब होगा। हम नित्य कर्म में जब भी कर्म करेंगे, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर रहा हूं, मैं आत्मा इन पांवों द्वारा चल रहा हूं, इन आंखों द्वारा देख रहा हूं, ये प्रैक्टिस हमारे अंदर चाहिए, तब जाके हम ये देह के संबंधों से जो भी जिसको भी देखेंगे। क्या मेरे याद है एक बार गुलबर्गा में भट्टी चल रहा था, शुरू में मैं ज्ञान में आया था, वो एक मंदिर में गए थे, वहां सब लोग भट्टी करते समय सबको बोला मौन रहना है, मगर मौन रहना है, कोई भी ओम शांति भी बोलना नहीं आपस में मिलते, क्या करते थे, बस जो भी मिलता है ऐसे ही करते थे, वो एक सिंबल बन गया था। उससे इतना गहरी अनुभव हुआ उस समय, जो मन पे छाप पड़ा, आज मैं समर्पित हुआ हूं उस बट्टी के कारण ही। माना इस तरह हमारे अंदर इतना गुल चढ़ गए, जो मैं संबंध, मेरा एक ही संबंध बाबा से है, सर्व संबंधों से, कोई भी संबंध का बार बार खिंचावट होता है। जैसा भाइयों को पिता का संबंध, बहनों को माता का संबंध, वो खिंचावट होता, मगर उस समय वहां किसको लाना है, बाबा को सामने लो, तब हमारे को ये संबंधों से भी हम मुक्त हो सकते। माना संबंध इधर का, इनसे भले कर्म कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, मगर वो संबंध जितना जितना हम बाबा के साथ जोड़ेंगे, वो संबंध हमारा क्या होगा, बाबा के साथ जोड़ने से लौकिक घर में रहते हुए भी वो संबंधों से मुक्त होकर बाबा के अलौकिक संबंधों में हम रह सकेंगे, अलौकिक परिवार का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने ये सब सहज हो सकता है, मगर बाबा ने इसका तीसरा नंबर बोला है पदार्थों का। सबसे बड़ी हमारे अंदर परिवर्तन होना है तो आज चाहे बाहर वालों को देखो, चाहे या ब्राह्मण परिवार को देखो, पदार्थ सबसे बड़ी इफेक्ट पड़ती है ब्राह्मणों में। आएंगे, ज्ञान में आ गए, सब कुछ समझ गए, मगर जब ऐसा कोई भी अभी कोई भी चीज आसक्ति है हमारे अंदर, अच्छा है जब हम क्लास में जा रहे, सब कुछ जा रहे, एक बहन ने अच्छी सफेद साड़ी पहना या अच्छी ड्रेस पहना, हमारा बुद्धि गई, माना वहां क्या हुआ, क्या हुआ, आसक्ति हुआ। हम प्रैक्टिकल आज देखते हैं, कई लोग प्रैक्टिकल हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, भाई साहब को भी हम कई बार देखा कई चीजों में। इस प्रकार हमारे अंदर कभी भी कोई भी चीज बुद्धि गई, फॉर एग्जाम्पल, और कोई भोजन लेके ताली लेके वहां बैठा है, हम भी लेके आया, वो हमारे को जो सब्जी मिला है वो कैसे जनरल से लेके आए, मगर उसने कुछ माल पानी का लगा के रखा, हमारा आंख उसमें गई, हमारा बुद्धि गई, तो क्या होगा, क्या हुआ वहां, हमारा स्थिति डाउन। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, उसको देने के लिए नहीं, वो चीज हमारे अंदर अट्रैक्टिव कर रहा, माना वहां ब्राह्मणों का विचलित हो रहा। इसीलिए हम पदार्थों के साथ साथ हमारा खाना पीना, चलना बोलना, कर्म संबंध संपर्क, इन सब में चेक करो। बाबा ने बोला है, बाबा ने एग्जाम्पल यह भी दिया है कि देखो प्रैक्टिकल यज्ञिस्ट्री, इसमें कितने लोग पढ़े हैं, यज्ञिस्ट्री का किताब पढ़ा है, यज्ञिस्ट्री का किताब पढ़िए, ब्रह्मा बाबा के हिस्ट्री में इस मुरली में बाबा ने क्लियर बताया क्या किया था, निर्मल शांत दादी को दम्मा था तो भी उस समय 15 दिन के लिए डोडा और छाछ पिलाया। डोडा और छाछ तो दम्मा वालों के लिए क्या होता है, डॉक्टर साहब जानता है, विष समझते, बाबा ने बोला विष भी क्या हुआ, अमृत हुआ। यहां तीन बातों का इफेक्ट पड़ा, एक तो बाबा का आज्ञा पालन किया, दूसरी हमारा, हम कुछ नहीं देखना है, बस बाबा ने कहा है करना है, और तीसरी बात वो तबीयत ठीक हो गई। इस प्रकार और उसके अलावा भी बाबा ने उसमें एग्जाम्पल ये भी दिया है, नरम जो सूखा रोटी है वो नरम बन गए, क्यों, खुशी मौज में बाबा के साथ थे, और बाबा के साथ, और बाबा ने कहा जिसके अंदर निश्चय होती है, दृढ़ विश्वास होता है, किसने कहा, हमेशा दादी जानकी दो शब्द कहते, मैं कौन मेरा कौन, किसने कहा, जैसा बाबा का जब मुरली चलने बाबा आता है, पहले मम्मा मुरली चला रहे, बाबा आया एकदम मम्मा स्टाफ होके, क्या होती है, बाबा जैसे ही बैठा चतुर्क पक्षी बनकर बाबा के तरफ मुंह ऐसा आधा में घुमा के बैठती थी, ये सुना ना हिस्ट्री में। इस तरह हम हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर हम जितना जितना बाबा के तरफ हम जाएंगे, बाबा के बातों को हमारे जीवन में जितना धारण करेंगे, उतना हम निश्चय बुद्धि होकर दृढ़ता पूर्वक जब करेंगे, हमको कोई भी पदार्थ हमारे को विचलित नहीं कर सकेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, करते क्या है इसमें, हम थोड़ा तो चलते हैं, कई बार कोई चीज का, जैसा अभी घर में होते हैं, वो दूसरा ब्राह्मण परिवार में वो स्कूटर लेके आया, रोज सेंटर पे जाना है, उसने लेके आया है उसके अनुसार, मगर हम भी होता तो अच्छा लगता, क्योंकि सेवा के लिए भाग भी सकते वो, मगर हमारा बुद्धि गई माना वहां हमारा फेल। हां जरूरत है, समय अनुसार उसको साधनों को यूज करके करना ये जरूरी। फिर आता है पुराने संस्कार। संस्कार में क्या करते हैं हम लोग, अपना संस्कार, कोई भी बात गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने गलती किया, उसको गलती को छुपाने के लिए फिर गलती करेंगे, क्या करेंगे, जिद करेंगे, मैं ही राइट हूं। मगर बाबा ने क्लियर किया, जिद करना माना सिद्ध करना, हा सिद्ध करना माना जिद है, राइट है, जिद तो नहीं करना है। मगर आप यदि इसके बैकग्राउंड देखा गए तो हम तपस्वी मुहूर्त, हमको कोई भी चीज आकर्षित नहीं करता, ये संकल्प हमारे अंदर रहे तो वो अपने आप आपकी बात को स्पष्ट हो जाएगा। इतना है, जैसा हम लोग न्यारे हैं, न्यारे से पहले क्या चाहिए, प्यारापन चाहिए, जब प्यारापन होगा तब न्यारे होंगे। फिर इस मुरली में सेवादारियों को कहा बाबा ने, सेवादारियों को निमित्त और निर्माण होंगे तो जो भी सेवा करेंगे उसमें क्या होगा, मौज में करेंगे, मुंजेंगे नहीं और खुशी खुशी से करेंगे, थकावट दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद बाबा ने मंजुला बेन को याद माना, मंजुला बेन भोग लगाने के लिए अहमदाबाद के सुख शांति के सेंटर, जो पहले पहले वहां था, वहां अर्ष हसमुख भाई था, हसमुख भाई माना मंजुला बेन का पति, उसने शरीर छोड़ा था, उसके बाद यहां मधुबन में वो लोग भोग लगाने के लिए आए थे, तो बाबा ने वो उनके लिए बोला, आपने अच्छी परीक्षा पास हुआ, पास विथ ऑनर हो गए, क्या क्यों का भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनका सेंटर को पूरा समझ। बाबा ने ये शब्द भी कहा, जैसा लौकिक वाले इंटरेस्ट माना बैंक में पैसा रखते उसका भाग्य मिल, इसी तरह आपने भाग्य बनाने का एक विधि बना लिया। फिर उसके बाद सेवादारी सच्ची तप सेवा, लास्ट एक ग्रुप में बाबा ने कहा सच्ची तपस्या माना, तपस्या करना माना, सोचो तपस्या करना माना सोना बनना। हाँ इस तरह हमारा तपस्या चलता रहे तो हम सोना बन जाएंगे। तपस्वी कहां भी छुप नहीं सकता है, ये गारंटी है। जैसा तपस्वी को क्या एग्जाम्पल दे सकते, मणि, मणि को चाहे मिट्टी में रखो किस में भी रखो, मगर उसका चमक कभी कम नहीं हो सकता, प्रकट हो सकता है। ओम शांति,
ओम शांति। 23 फर्स्ट जनवरी मास 69 की मुरली है, अस्थियां है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। इसमें पहली पॉइंट निकाली है, जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। इसमें आगे एक और बोला है कि अगर अव्यक्त रूप में देखेंगे, अगर व्यक्त रूप में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। तो पहले तो बाबा का मिलन साकार होता था तो थोड़ा सहज रहता था, लेकिन जब बाबा का ये अव्यक्त पाठ चला तो उसके बाद बाबा ने विशेष बोलना शुरू किया कि स्थिति आधार है आपके मिलन की। जैसी आपकी स्थिति होगी, जितना आप उस स्वरूप में होंगे उतना ही बाबा से उस मिलन की अनुभूति कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है, ये बात ब्रह्मा बाबा से, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव के रूप में सुना रहे हैं कि बाबा से वतन में क्या बात हुई। वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो क्या, जब क्या जवाब दिया होगा, जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, शिव बाबा ने पूछा और ब्रह्मा बाबा ने उत्तर दिया। इस उत्तर में दो भाव स्पष्ट हो रहे हैं, एक तो स्नेह का और दूसरा निश्चय का। वैसे भी देखा जाए जिससे हमारा स्नेह होता है तो उसके स्नेह में अगर हमें उसके साथ कहीं जाना है, कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो उसका अनुभव हमें नहीं होता है, बल्कि उस स्नेह के कारण खुशी प्रेम का अलग अनुभव होता है। दूसरा निश्चय इस बात का है कि सोच नहीं चल रही है, कहाँ रहना है, ऐसे करना है, नहीं करना है, तो इस दो वाक्य में कितना निश्चय समाया हुआ है कि एक तो बाबा से प्यार भी है, जैसे रखे, जहां रखे, जिस स्थिति में रखे, और दूसरी चीज है निश्चय अटूट है। थर्ड पॉइंट है, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे, ये शिव बाबा कह रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाते, इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। एक तो प्रेम भी है, स्नेह भी है, और दूसरी ओर बाबा ने जो कराया, जैसे कराया, उसके प्रति निश्चय भी। यहां एक बात याद आ रही थी, जानकी दादी से एक भाई ने प्रश्न पूछा था कि दादी, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो आपको क्या संकल्प था, क्या लगा? तो दादी ने बोला, कुछ देर के लिए तो लगा कि बाबा कैसे शरीर छोड़ सकता है। तो दादी ने एक बहुत अच्छा अनुभव बताया था कराची का, कि एक बार क्लास चल रही थी और क्लास के बाद बाबा ने अनाउंस किया कि दीदी एक भवन का जो है जिम्मेदारी देखती थी, तो बाबा ने बोला, आज से ये भवन जो है चंद्रमणि दादी देखेगी, दीदी नहीं देखेगी। तो दादी ने बोला, मुझे केवल संकल्प चला था कि जितना अच्छा दीदी संभालती है उतना अच्छा चंद्रमणि नहीं संभाल पाएगी। तो क्लास के बाद फिर दादी को बाबा ने बुलाया और बाबा ने बोला कि आज चंद्रमणि को बिठाया है, कल पुष्पा को बिठाऊंगा, परसों पुष्पी को बिठाऊंगा, तुम्हारा क्या जाता है? एक 80 साल की बुढ़िया थी और एक जो है 8 साल की कन्या थी। तो बाबा ने बोला कि यज्ञ माता यज्ञ पिता बैठे हुए हैं और वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, यज्ञ में उसी में ही कल्याण है। तो दादी ने बोला, ये बात उस दिन बाबा की लग गई। फिर उसके बाद कभी भी दादी कहती, मेरा ये संकल्प नहीं चलता था, बाबा ने उसको यहां क्यों भेजा, यहां नहीं भेजा, ऐसे करना चाहिए था, या ऐसे नहीं करके ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा था। तो दादी ने बोला, बाबा के शरीर छोड़ने के कुछ ही देर मुझे ये तुरंत संकल्प आया कि जैसा हुआ है वो ही अच्छा है, उसी में ही कल्याण है। तो ये बात जो है बाबा की, कि जो भी ड्रामा में हुआ, अगर बाबा बिठाकर छुट्टी दिलाता तो क्या छुट्टी दे देते, लेकिन जैसे विधि ड्रामा में थी वही सबसे अच्छी थी, वही सबसे बेस्ट थी। फोर्थ में है, जो नैनों से मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। और इसमें एक जगह ये बात भी बोली है, कर्म इंद्रियों से कर्म ऐसा होगा जो लगेगा श्रीमत राय दे रही है, लेकिन ये उनके लिए है जिनकी बुद्धि बाबा की तरफ होगी और दूसरा जिनको नैनों की भाषा समझ में आती होगी। क्योंकि एक बहन ने मम्मा से पूछा था, क्लास में बैठे थे तो बाबा ने कुछ डायरेक्शन दिया, केवल इशारा किया था आंख से, मम्मा समझ गई, उठ के चली गई, और जो बहन ने देखा उसे समझ में नहीं आया बाबा ने ऐसे क्या बोला। तो बाबा ने उसने मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने कहा कि ये बाबा की इशारे की भाषा थी और ये उसी को समझ में आ सकती है जो नजदीक का हो, जो समझ सकता हो। तो ये भी कितनी गहरी बात है, जब स्थूल किसी के व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसके इशारे समझ जाते हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है। तो बाबा ने भी यहां बोला कि जो नैनों की भाषा समझ सकते हैं, आंखों की भाषा समझ सकते हैं, बाबा के संकल्प समझ सकते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे श्रीमत कोई डायरेक्शन दे रहा है और जो कर्म हो रहा है कर्म इंद्रियों से वो श्रीमद् द्वारा ही हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, अब जहां तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। इसमें कंडीशन दी है बाबा ने, बुद्धि क्लियर होना। अगर कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा हो और उसकी बुद्धि कहीं और जा रही हो तो क्या बोलेगा, सुना नहीं, जरा फिर से सुनाना, क्योंकि बुद्धि ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंगेज थी। कभी कभी मुरली में भी कुछ मुरली चल रही है और सोच रहे हैं कहीं और का, और फिर जब पूछा जाता है क्या था तो कहते पता नहीं, बहुत अच्छी थी मुरली। तो कहीं ना कहीं बुद्धि किसी और चीज में बिजी थी। जब बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है तब हम जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं उससे मिसिंग कर देते। कई बार कोई व्यक्ति कहीं सोच रहा है और सामने से ही कोई जाता है तो कहते दिखाई नहीं दिया, देखा ही नहीं, तो आंखें तो खुली थी पर बुद्धि कहीं ना कहीं बिजी थी। तो इसमें भी बाबा ने जो कंडीशन डाली है कि बाबा से मिलन मनाने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, क्योंकि यह अव्यक्त मिलन है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं, हम दोनों एक दूसरे से एक पल भी अलग नहीं हो सकते, ऐसे आप अपने को त्रिमूर्ति समझो। क्योंकि ये प्रश्न अब ना आए कि बाबा आया है दादा नहीं आया है या केवल ब्रह्मा बाबा आता है, तो इस तरीके के प्रश्न ना उठे। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि हम दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकते। और आप क्या समझो अपने आप को? त्रिमूर्ति, मतलब बाप दादा के साथ हम भी कंबाइंड हैं। इसमें बाबा ने यह भी बोला कि बैच को भी याद रखो, जैसे त्रिमूर्ति का बैच होता है। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है, जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे, इसलिए स्नेह होने की कोशिश करो। स्थूल भी सूक्ष्म भी दोनों बातें हैं, स्थूल भी होना चाहिए तो सूक्ष्म भी, क्योंकि वैसे तो मुख्य सूक्ष्म ही है, क्योंकि अगर आप बुद्धि से ही नहीं हो तो स्थूल मतलब कर्म में सेवा में वो कहीं ना कहीं अंदर से भी कमजोर थे तो बाहर से भी, क्योंकि दोनों बातें रहती हैं। इसमें बाबा ने एक चीज और बताई है, स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ। और एक बात ये भी याद आ रही थी कि बाबा ने बोला कि स्नेह होने की कोशिश करना है, जैसे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि देखा जाता है कि जो हम विकारी आत्माओं के प्रति कितना स्नेह रहता है, विकारों के प्रति कितना स्नेह रहता है, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान मदद कर रहा है, उसके बाद भी इतना स्नेह है दुखों से तकलीफों से कि वो छूट नहीं रहे। और यहां जो सर्व का सदगति दाता है, प्रेम का सागर है, उससे स्नेह रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है, जबकि शायद विकारों से स्नेह रखने के लिए कोई कोशिश नहीं करता होगा। तो इसमें कंडीशन दी है बाबा ने, स्नेह आत्मा के साथ रखना है और दूसरा कर्तव्यों के साथ, तो इससे स्नेह बढ़ सकता। और भी स्नेह बढ़ाने के लिए जो बाप ने हमारे लिए किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता, अगर उनको भी हम बुद्धि में याद रखेंगे तो उससे भी हमारा स्नेह जो है बाप के लिए बढ़ेगा। ठीक, ओम शांति।
ओम शांति। तो 26/10/91 की मुरली जो तपस्या वर्ष चल रहा था, तो उसी समय की बात है कि ज्ञान सरोवर और ग्लोबल हॉस्पिटल भी बन रहे थे, तो उसी समय बाप दादा ने ये मुरली चलाई है ओम शांति ओम में। तो इसमें सात पॉइंट्स में पहली पॉइंट है स्वराज्य अधिकारी तपस्या, अर्थात स्वराज्य अधिकारी, और मुरली का टाइटल था तपस्या का फल खुशी। तो पहले पॉइंट है स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे कहानी सुनी है सभी ने कि जैसे राजकुमार था और उसको बचपन में भेड़िए उठा के ले गए जंगल में, और वो भेड़ियों के झुंड में रहते रहते उसके संस्कार भी भेड़ियों जैसे हो गए। और जब राजा एक बार गया जंगल में शिकार करने, तो उसने उन्हें पहचान लिया कि अपना ही राजकुमार है। और उन्होंने जब घर लाया और उसको पहचान दिलाई कि नहीं तुम राजकुमार हो और तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक हो, राज्य अधिकारी हो, तो ठीक इसी प्रकार बाप दादा ने भी हमें ढूंढा है, तो हमें भी क्या बनाया, स्वराज्य अधिकारी बनाया। बाबा ने कहा कि तुम राजा बच्चे हो, और ये राज्य अधिकारी का तिलक दिया, तो फिर जन्मते ही हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, स्वराज्य का तिलक मिल जाते हैं। तो पहले तो हम गुलाम थे, गुलाम मैं गुलाम गाते थे भगवान के लिए, और माया के अधीन होने के कारण भी पूरे गुलाम ही हो गए थे, 63 जन्म भक्ति के विकारों के अधीन हो गए थे। लेकिन फिर जब पहचान मिली तो हमने गीत गाना चालू किया कि कौन सा गीत, नहीं मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, हाँ मैं तेरी तू मेरा, यह गीत हम गाने लगे, और यही हमारी सच्ची पहचान सम्मान मिल गया और तपस्या यही हो गई चालू। और इस तपस्या के फलस्वरूप भाग्य विधाता को अपना बना लिया, तो सारा भाग्य ही हमारा हो गया, तो तपस्वी भी बन गए और स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। तो इससे हम क्या बन गए, तपस्वी राज, तपस्वी राज बन गए। तो इस प्रकार यहाँ पहली पॉइंट है। दूसरे पॉइंट है तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और गाना। तो वैसे बाबा दादा ने कहा है कि कई मूल्यों में संगम युग है, मौजों का युग, रूहानी मौज। हाँ, झूले में हाँ, जैसे स्लोगन में था आज के, हाँ स्विंग। तो यही मुश्किल नहीं, मनोरंजन वाला झूला, मनोरंजन के झूले में झूलते रहो। तो जैसे ये मौजों का युग है, और कोई भी जो सेवा होती है तो वो मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि बाप दादा साथ है। और इसमें हमें थोड़ा स्वार्थ होता है कि हम भविष्य के कुछ राजा हमारा तो बनेंगे। हाँ हाँ, तो उसके कारण वो मेहनत नहीं लगती, मुश्किल सहज हो जाती, मनोरंजन हो जाता है। तो ये खुश तपस्या तो माना खुशी। तो नाचना और गाना, तो नाचते हैं खुशी में और गाते हैं क्या, गीत कौन से गाते हैं? अब हाँ, ये अनेक गीत तो है, जैसे वाह बाबा वाह, वाह पाना था सो पा लिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। और हाँ, और एक गीत कौन सा है कि अपने अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप का गीत, और बाप के अनादि स्वरूप का गीत गाते रहते हैं, तो इससे हम खुशी में रहते हैं। तीसरी पॉइंट है कि इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग करो। तो जैसे सारे विश्व में दुख अशांति है, तो दुख अशांति के कारण सभी आत्माएं तड़प रही है, तो उस समय बाबा दादा ने ये तपस्या वर्ष में होमवर्क दे दिया था कि अभी योग का प्रयोग करो। जैसे साधारण मनुष्य आत्माएं 4-5 मिनट संकल्प करने के बाद सफलता प्राप्त करती है, तो आप तो महान आत्माएं हो, तो 1 सेकंड में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार संकल्पों की बचत करो। तो मेन दो खजाने बताए, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। तो ये इकोनॉमी करेंगे संकल्प के, तो फिर आपको समय मिल जाएगा औरों को सकल देने का, दान पुण्य करने का। तो इसके लिए बाबा ने भी जैसे किया, कम खर्च वाला नसीन। तो इस प्रकार हम समय की बचत द्वारा ये योग का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथी पॉइंट थी होलियंस, तपस्या अर्थात होलियंस। तो होलियंस की विशेषता क्या है? हाँ, अवगुण छोड़ गुण धारण करती है, निगेटिव को पॉजिटिव करती है, कंकर और पत्थर अलग कर मोती चुग लेती है, नीर को चीर नीर और चीर अलग कर देती है। और मेन बात है कि हम ब्राह्मण आत्माएं हंस बुद्धि होने के कारण निगेटिव को पॉजिटिव में, व्यर्थ को समर्थ में कर सकते हैं। तो ये मेन विशेषता है कि व्यर्थ को समर्थ में। इसके लिए बाबा ने कहा कि कोई कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति हमें सुभावना शुभकामना रखनी है। इसके लिए उदाहरण दिया था बाबा ने, जैसे कोई पात्र है उसमें गंदा पानी है, तो उसको निकालना है तो भरते जाओ अच्छा पानी, तो वो सब ऑटोमेटिक निकलते जाएगा। तो इस प्रकार सबके प्रति सुभावना शुभकामना रखनी है। जैसे लौकिक में भी जो भक्त लोग होते हैं वो भावना से क्या कर देते हैं, भावना का फल उन्हें प्राप्त होता है, तो हम तो सुभावना रखते तो क्यों नहीं होगा। तो ये है। फिर पांचवी पॉइंट थी तपस्या अर्थात सिंपति, रूहानी सिंपति। हाँ, सिंपति हिंदी में क्या कहेंगे? सहानुभूति, हमदर्दी कह सकते हैं, हमदर्दी। हाँ, तो सहानुभूति तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ये तो धनवान लोगों को भी चाहिए, तो गरीब लोगों को भी चाहिए। तो इससे बड़ी संपत्ति कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आज के समय में इसकी आवश्यकता है। सिंपैथी के द्वारा तो ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये सभी के प्रति, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, बहुत कम। तो हाँ, ये हाँ, तो इसके द्वारा हम तन मन धन की भी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये रूहानी सिंपैथी रखनी है, और दुआओं का स्टॉक जमा करना, तपस्या अर्थात दुआओं का स्टॉक जमा करना। तो अभी हम संगम युग पर दुआओं का स्टॉक जमा करेंगे तो नहीं, द्वापर से हमारे जड़ मूर्ति द्वारा दुआएं मिलती रहेंगी, भक्तों की जो भी कामना रखेंगे वो पूर्ण होती रहेंगी। तो उसमें खास बाबा ने बोला था मधुबन निवासियों के लिए कि आप दर्शनीय मूर्त हो और आपके द्वारा ही ये दुआओं का दुआओं की प्राप्ति होती है सब। तो एक पॉइंट शायद रहेगी, हाँ, तपस्या अर्थात सहज सफलता, सहज सफलता, सहज अनुभूति। जैसे इसको उदाहरण दिया था बाबदाना ने फुटबॉल का, जैसे फुटबॉल को ठोकर मारते हैं तभी बॉल दूर जाती है, उसी प्रकार हमारे पास भी ये परिस्थितियां समस्या आती है। तो हमें तो ये खेल के समय समान खेलना है, ये जो भी परिस्थितियां समस्या आती है। तो जैसे वो खिलाड़ी होता है वो, तो जब मेरे पास बॉल आए तो किक मारने की सोचता है वो, कि वो मतलब उसको चांस मिलना चाहिए। उसी प्रकार हमें भी ये मतलब वेलकम करना चाहिए जो भी परिस्थिति है, कि जब कोई भी परिस्थिति आए उसके लिए एवर रेडी। तो इस प्रकार हम ये खेल के समय खेल के समान कर सकते हैं, और जो भी ये सेवा है ये भी सहज हो जाती है और सेवा में सहज सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।
21 सेकंड 84। ओम शांति, ओम शांति। मुझे अव्यक्त वाणी का टॉपिक दिया गया था शीतलता की शक्ति, और डेट थी 21 फरवरी 1985। एक ज्वरासुर नाम का राक्षस होता है, ज्वरासुर। उसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का वर होता है, उसे मुझे हिंदी में नहीं आता क्या बोलते, तो उसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का वर होता है, और उस वक्त उसको शिव का वर होता है। तब माँ पार्वती वो बहुत सबको तंग करता है और सबको ज्वर उत्पन्न करता है, और सब छोटे छोटे बच्चों को उस टाइम में बहुत फीवर होता है, और वो अपने जो वर मिलता है उसका वो बहुत दुरुपयोग करता है। तब माँ पार्वती शीतला माता का अवतार लेती है और वो उसको गधा बना देती है, जो ज्वरासुर होता है ना उसे वो गधा बना देती है। और शीतला माता है उसके हाथ में ना झाड़ू दिखाया हुआ है, और एक हाथ में उसे बर्तन कहेंगे तो हाँ कमंडलू ऐसा कुछ दिखाया गया है, तो वो उस झाड़ू से उन बच्चों का ज्वर उतारती है और उसे गधा बना देती है। और जब वो गधा बनाती है तो तब से वो शीतला देवी का वाहन होता है। जैसे गधे के पूंछ पर गर्म पानी डालो ठंडा पानी डालो कोई इफेक्ट नहीं होता, उसी प्रकार तो कोई इफेक्ट नहीं होता उसी प्रकार यदि हमारी स्थिति यदि शीतल है तो कोई भी परिस्थिति आती है तो हम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और बाबा ने उस मुरली में शीतला देवी का उदाहरण दिया था। तो अपना आत्मा का स्वधर्म ही है शांति, और जब आत्मा का स्वधर्म ही है शांति तो यदि हम उस स्वधर्म में टिकते हैं तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और जैसे बाबा ने उस टाइम पे उस मुरली में ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के बारे में बोला गया है, तो ज्ञान सूर्य है शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। उसे चंद्रमा मा यानी शब्द में ही वात्सल्य है, जब शब्द में ही वात्सल्य है तो जब ज्ञान सूर्य है वो है सत्य, और यदि सत्यता है तो हम योग्य बनते हैं, और उसके बाद यदि हमें शीतलता है तो हम योगी बनते हैं। तो दोनों चीज भी उतनी ही आवश्यक है, सत्यता और शीतलता, ये दोनों गुण हमें आवश्यक है। उसके बाद बाबा ने कहा है कि वृक्ष का बाबा ने उदाहरण दिया है कि वो सबको कितना शीतलता प्रदान करता है। बाबा ने वृक्ष के बारे में बोला है कि वृक्ष जैसे किसी को वो पहचानता नहीं, वो अपना है पराया है, फिर भी वो सबको उतनी ही शीतलता का अनुभव कराता है। उसी प्रकार बाबा कहता है कि यदि हमें आत्मा शीतलता की शक्ति अर्थात शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति, जैसे यदि आत्मिक स्नेह है, जैसे दादी थी, दादी प्रकाशमणि को हमने तो नहीं देखा, पर यदि किसी किसी के मन में यदि संकल्प चलता था और तब दादी पूछती थी कि क्या है, कैसे हो, तब कि कोई भी भाई हो, बहन हो, कुछ बोल नहीं पाती थी, उस पल वो शांति का अनुभव कर लेती थी और उसे उतना ही सुकून मिलता था। और सारे संकल्प यदि बंद होते हैं, यदि हम में शीतलता की शक्ति है, तो हमारे बोल में, कर्म में, व्यवहार में वो उसकी झलक हमें दिखती है। और बाबा ये कहता है कि उस मुरली में ये कहता है कि यदि हमें उस चीजों से यदि बचना है, तो बाबा ने 5 प्रकार की आग भी बताई है। और यदि हमें विनाश की ज्वाला से बचना है, हाँ, उस दादी के इसमें बहुत सुंदर मुझे एक चीज लगी, जैसे चंदन के झाड़ को यदि सांप लपटे हुए रहता है, फिर भी वो चंदन का जो सांप का विष होता है वो चंदन के झाड़ को नहीं लगता। यदि हमारे अंदर वो शीतलता की शक्ति है, तो हम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी वायुमंडल में होते हुए भी हम उस स्थिति में रह सकते हैं। और परसों के दिन सूरज भाई जी ने एक क्लास में कहा था कि बहुत विनाश की आग लगेगी, बहुत लपटे निकलेगी और उस पल सब लोग जल जाएंगे और हमारे परिवार वाले भी उस समय नहीं बचे, और कोई बचा और उसको यदि वो उस टाइम पे सिर्फ शीतलता की शक्ति का अनुभव हम ही लोग करा सकते हैं, हम ही उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, पर वो शक्ति यदि हमारे में पूरी भरी हुई है तभी हम उसका अनुभूति करा सकते हैं। तो बाबा ने उस मुरली में ये भी कहा है कि हमें यदि विनाश की ज्वाला से बचना है तो हमें निर्भयता की शक्ति चाहिए। तो निर्भयता की शक्ति के लिए बाबा ने ये भी कहा है कि 5 प्रकार की आग है और हम उससे बच सकते हैं, जैसे विकारों की आग है और विनाश की आग है जिसे हम निर्भयता की शक्ति से बच सकते हैं अनादि रूप में स्थित होके, विकारों की आग है जिसे हम निर्विकारी बने तो हम लोग अपने देवता स्वरूप में टिक सकते हैं। उसके बाद देह और देह के संबंध की भी बारे में बाबा ने बोला है, तो हम बाबा ही संसार है ये हम लोग उस समय अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद बाबा ने पदार्थ के बारे में बोला है, तब भी हम बाबा ही संसार ये बोल सकते हैं। उसके बाद बाबा ने पश्चाताप की आग के बारे में बोला है, तो हम उस समय प्राप्ति स्वरूप में हम लोग उस समय टिके तो हम वो भी कर सकते हैं। बाबा ने शीतलता के बारे में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिया है कि यदि हम अपने उस गुण को धारण करते हैं और खुद को चेक करते हैं, रियलाइज करते हैं, वो मुरली बहुत अव्यक्तवाणी जो चली वो मेरे ऊपर ही चली, क्योंकि हम उस पर चेक करते रहते हैं कि क्या हम में वो शीतलता है या नहीं है और कुछ कमी है, तो हम उसको 2 दिन से तो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो वो यदि चीज हमें आती है शीतलता की शक्ति, तो हम वो हर चीज से निपट सकते हैं। जैसे एक उसमें बहुत सुंदर दिया है कि चंद्रमा, चंद्र को माँ क्यों कहा जाता है, तो जैसे माँ होती है जो अपना कितना ही भी बच्चा बिगड़ा हुआ होता है फिर भी वो उसे अपने स्नेह की शक्ति से उसे सुधारने की कोशिश करती है, ना ही उसको उसको अपने से दूर करती है। यदि माँ चाहती है तो उसी प्रकार यदि हम में स्नेह की शक्ति है तो हम कितने भी बिगड़े हुए व्यक्ति को, परिस्थिति को और हर प्रसंग को हम लोग उसको सुधार सकते हैं। इसीलिए बाबा ने ऐसे ही प्रकार बाबा ने कि शीतलता की शक्ति हमें धारण करनी है और उस टाइम पे ये मुरली चलाई थी। ओम शांति।